ओम शांति। जब मैं जा रही थी परसों तो गुप्ता भाई जी ने एक विषय दे दी, तो संबंधों में मधुरता कैसे हो। मैंने कहा ये तो हमारा प्रैक्टिकल में हमारा परिवार है और सब अनुभवी कुमार, तो कोई दो चार होंगे शायद, होंगे या न भी होंगे, कोई भी नहीं, तो बाकी तो सब प्रवृत्ति में रहने वाले हैं। बहुआ भी होंगी, बच्चियां भी होंगी, पोतरे भी होंगे, दोतरे भी होंगे, तो उनको तो प्रैक्टिकल में अनुभव होगा कि वास्तव में संबंध तो होता ही है मधुरता से। जिसको संबंध शब्द बोला जाता है उसमें मधुरता होती है, जब संबंध बिगड़ जाता है तो मधुरता खत्म हो जाती है। क्यों संबंध बिगड़ते हैं? प्यार से माता पिता बच्चे की शादी कराते हैं, बैंड बाजा बिजलियां बल्ब पता नहीं क्या क्या शाद मना करते, और थोड़े समय के बाद बिल्कुल सबका दिल मायूस हो जाता है। घर के अंदर ही वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है उनकी, जितनी वो आश लगा के बैठते हैं हमारी बहू आएंगी, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। हाँ, बहू के प्रति बहुत बातें उनके मन में होती है, सासुओं के मन में, और बहू के मन में भी होगा कि हम एक नए घर में जाते हैं, नए परिवार में जाती है, तो उनको विशेष अपने पति के लिए होता है, मैं उनके साथ जाऊंगी, घूमूंगी, फिरूंगी, ये करूंगी, ऐसे ऐसे बातें। परंतु कुछ समय के बाद ही सारे घर में एक उदासी छा जाती है। उसका कारण क्या होता है? आप सब अनुभवी हैं, एक एक शब्द में बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये क्लास करने नहीं आई हूँ, क्लास उषा बहन ने कराया, मैं तो आई हूँ आपसे रूहरियान करने, अनुभव के लेन देन करने। तो अनुभव के लेन देन में मुझे आपका भी विचार चाहिए। मैं तो हूँ कुमारी, हाँ, आदि भी कुमारी तो अंत में भी कुमारी होकर के परम धाम में जाएंगे, तो हमारे अंदर में आप वाला तो आ ही नहीं सकता है। आपका अनुभव आपके पास है, परंतु आप जैसे भाई बहने जब मिलते हैं और हमारे सामने अपनी परिस्थिति रखती है, कुछ बातें रखती है, तो हमारे ध्यान में आता है ये बिगाड़ कहाँ से शुरू होता है, क्यों बिगाड़ शुरू होता है। माँ बाप इतनी खुशी मनाते हैं, इतना खर्च करते हैं, आशाएं लगा के बैठते हैं, चंद दिनों में नक्शा बदल जाता है, तो क्या कारण होता है? आप में से कोई बताएगा? हाँ, उठ खड़े हो जाए, फिर आप बताते रहना थोड़ा।
पहली बात, मैंने जनरेशन गैप, सास बहू इनकी जो एज और जो उनका रीजन है उससे वो एडजस्ट कर नहीं पाते। जो सास ने सहा था वो बहू को सहना नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ा उसके दिल में उसके बारे में कुछ अच्छा विचार नहीं आता है। दूसरी बात, जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट करने के लिए सास भी तैयार नहीं होती और बहू भी तैयार नहीं होती, इसलिए तनाव बढ़ जाता है।
राइट।
तीसरी बात, एजुकेशन, जो सास का एजुकेशन था उनकी माहौल थी वो बहू के वक्त नहीं है, बहू का एजुकेशन थोड़ा अलग ढंग से हुआ है, वो कॉन्वेंट में पढ़ी है, वो कॉलेज में पढ़ी हुई, और सास कुछ ऐसी जितनी पड़ी नहीं रहती, इसलिए तनाव हो जाता है और इसलिए एकता नहीं होती है घर में।
अच्छा, ठीक है, राइट बताया। और भी कोई एक आधा भाई बहन बता रही? हाँ, ये ठीक है, एक भाई एक बहन। बहन जी अनुभव की बातें सुनाएगी। चलो, बुद्धि से तो है, जनता के बीच में हो ना, पता तो लगता होगा।
ओम शांति। शशि चंडीगढ़ से हूँ। आज सास बहू में जो तनाव या जो संबंधों में कटुता आ गई है, उसका विचारों में परिवर्तन, कि विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, चाहे वह उम्र का लिहाज है, चाहे वह पढ़ाई का शिक्षा का प्रभाव है। लेकिन कुछ अंशों में हमने ये भी देखा है कि आज सास ज्यादा अवेयरनेस है, वह अपने बहू के साथ बेटों के साथ तालमेल बनाकर रखती। जरूरी नहीं है कि हम उसका एक नेगेटिव पॉइंट ही देखें, नकारात्मक विचार देखें, सकारात्मक भी हम देखते हैं तो आज की जो सासें हैं वह बहुओं से ज्यादा मिलकर रहती हैं। और यह हमारा अनुभव है कि मेरे साथ जो मेरी कुलीग है उनके उनकी बहुएं हैं तो बहुत प्यार से रहती हैं, बल्कि सासें अपनी बहुओं के को बेटी की तरह मानकर और उनके साथ उनका सहयोग पूरा करती है, उनके बच्चों को देखती हैं, उनके साथ मिलकर रहती हैं। तो ये तो अपने अपने विचारों की बात है,
फिर भी मैं डायरेक्टली की बात सुना।
ओके, धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट छेड़ा गया है ये। दादी जी ने जो आज पूछा, मेरी भी काफी दिनों से इच्छा थी कि इस सब्जेक्ट पे हमारे ब्रह्म कुमारी वाले जरूर चर्चा छेड़े, इस पर ज्ञान दें, क्योंकि आजकल ये माहौल बहुत बन रहा है। आप भी जानते हैं हर टीवी सीरियल में बस सास बहू के सीरियल ज्यादा चल रहे हैं, सास बहू के मैटर्स ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जहां भी देखेंगे आप, जिधर भी देखेंगे तो बस एक सीरियल चल गया, फिर वो जिधर उधर सास बहू के सीरियल चल रहे हैं, क्योंकि सामूहिक सब्जेक्ट है ये, सामूहिक विषय है कि जिधर उधर सभी के घर में ले दे के हमारी तुम्हारी वही कहानियां हैं, पर हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहते, हम लोग सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस मैं अपने विचार अपने अनुभव वही बताना चाहती हूँ। एक्चुअल होता यह है कि आज हमारी जो जनरेशन है और हमसे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी जनरेशन, हमारी जनरेशन में यही फर्क होता है कि उनका जो रहने का स्टैंडर्ड रहा है वो अलग है, हमारा एजुकेशन, हमारी जनरेशन कुछ अलग जा रही है, जिससे कि वो हमें नहीं समझ पाते, हम उनको नहीं समझ पाते हैं, इससे तालमेल नहीं बैठता है, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो सास होती है या सास या कहना चाहिए हर औरत का एक नेचर होता है कि वो जो बेटी से बिहेवियर जो उसका होता है वो एक खून का रिश्ता होता है, उससे जो अटैचमेंट होते हैं वो बहू के साथ नहीं होते, बहू के साथ उसके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उम्मीदें होती है कि उसको ये लगता है कि बहू आई है मेरी सेवा करना चाहिए, मेरे घर को बहुत अच्छे से संवारना चाहिए, मेरे बेटे की सेवा करना चाहिए। वहीं कभी अचानक बहू की तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो वो बहू को समझ नहीं पाती, उसको लगता नहीं नाटक कर रही है, अभी अभी तो आई है, इतनी जल्दी कैसे बीमार पड़ जाएगी, अचानक क्या हो गया। और वहीं उसकी बेटी अगर बीमार पड़ जाए तो घर सर पे उठ जाता है, 2 डॉक्टर 10 डॉक्टर आ जाते हैं दो की बजाय, वो इधर उधर सब दौड़ धूप मच जाती है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, समझदारी की बात है। आज वही सास ये समझे कि भाई ये बाहर की बच्ची आई है और इसका ये माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर आई है और इसका हमारे सिवाय कोई नहीं है और हमने इसका पूरा देखरेख करना चाहिए, अभी तो नहीं है, हमें ढलने को थोड़ा समय लगेगा, हमको समझने और इसको हमें समझने थोड़ा वक्त हमको देना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग अगर हर औरत में बैठ जाए तो मुझे लगता है कि काफी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये मैटर खड़े नहीं होंगे, किसी के घर में कोई विवाद नहीं होंगे और सास बहू का तो ऐसा रहेगा जैसे कि एक दो सहेलियां आपस में जैसे रहती है वैसे सास बहू रहने लगेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।
और कौन बोलने चाहेगा? जो बोलने चाहे वो आगे आ जाए। सिद्धार्थ जी।
ओम शांति। बड़ा सोहना सब्जेक्ट दादी जी ने चुनिया। मैं इको ही ध्यान दवांगा कि दाज ते दहेज जिहड़ी है वह प्रथा जिहड़ी है ओही साडी कारण है इन्हां डिसेंशंस दा। किसी भी तरह सोच लो जे वह लड़की तो असी ये भी मतलब एक्सपैक्ट करिए भी कुछ नहीं लैना तो ईवन दैन उस तो बाद दे जेड़े त्यौहार ने जिवें करवा चौथ आ गया जां कोई दिवाली आ गई तो उहदे उत्ते भी एक्सपैक्टेशन आ जाती है कि चलो जो उदो नहीं तो हुण कुछ लैके आए। मैं फील करदा वा कि जिहड़ी डौरी दहाज दहेज है यही सारिया कारण है इन्हां डिसेंशंस दा। थैंक यू।
और भी कोई अपना विचार दे।
ओम शांति। मेरा अपना अनुभव तो नहीं है लेकिन जो मैंने देखा है अपने कोलीग्स में, स्पेशली इन दी यंगर कोलीग्स जो जिनकी अभी अभी कुछ 3 साल 4 साल 2 साल पहले शादी हुई है, तो उनमें देखा मैंने वाइफ भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो अभी नई लड़कियों में और पुराने जो डॉक्टर्स हैं उनमें थोड़ा ये मैंने फर्क देखा कि दैट फीलिंग कि वी आर इक्वल मींस हम भी कमाते हैं तुम भी कमाते हो, तो दैट ईगो क्लैश थोड़ा लड़की में रहता है और उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा हवा देते हैं, मतलब रादर देन मतलब उनको सही रास्ता बताने के बजाय उनको उल्टे रास्ते चढ़ाते हैं। और जो पुराने जो हमारी जनरेशन वाले डॉक्टर्स थे तो हम ये ऐसा मानते हैं कि ओके हम इक्वल हैं बट एट द सेम टाइम वी आर डिफरेंट, वी हैव हमारे दो अलग सोशल रोल्स हैं। तो अगर इक्वल का मतलब ये नहीं है कि आज सर्वेंट नहीं आई तो मैं बर्तन साफ कर रही हूँ तो मेरा हस्बैंड भी आधे बर्तन साफ करे, दैट इज वो एटीट्यूड नई लड़कियों में मैंने देखा कि हम भी तो हैं तो हम नहीं थके हैं क्या, तो उन्हें तो हो सकता है वो जाके बाजार से दो सब्जियां ले आए हम घर का झाड़ू लगा दें, या दो दिन घर का झाड़ू नहीं लगा वो ज्यादा अच्छा है बजाय उसके। मेरे मतलब मैं रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो लड़का सर्जन था, वाइफ डेंटल सर्जन थी, तो सर्वेंट के नहीं आने से हस्बैंड को उसने फोर्स किया तो उसने बेचारे ने पोछा लगाया विथ लकड़ी का वो जो पोछा होता है वो साथ में कपड़ा लगा होता है, फिर भी झगड़ा चलता रहा। तो रात के 12 बजे लड़की के पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया कि मैडम उनका बहुत झगड़ा हो रहा है आप जरा जाइए। तो लड़की की ये शिकायत है कि मैडम इसने पोछा तो लगाया लेकिन वो नीचे बैठ के नहीं लगाया। So, मेरे ख्याल से वो ईगो क्लैश। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि लड़की के पेरेंट्स को, क्योंकि अभी ये एक नया हमारा ट्रांजिशन फेज चल रहा है सोसाइटी में कि अब लड़कियां पढ़ रही हैं, जॉब में जा रही हैं, दे आर एम्पावर्ड, पर सोशल रोल हमारा एज ए वुमन, एज ए वाइफ, एज ए मदर, इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से दबना है, पर हमें सौहार्द के साथ, डिग्निटी के साथ किस तरह रहना है, ये हमारे लड़कियों के पेरेंट्स को सिखाना बहुत जरूरी है। वो कि हमारी लड़की आप क्या, हमारी लड़की तो डॉक्टर है, हमारी लड़की ये है, तो वो तो खाना बनाएगी नहीं। भाई ठीक है सर्वेंट बनाता है, पर कभी सर्वेंट नहीं आया तब तो बना सकती है। तो ये मेरे बहुत सारे अनुभव में, बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा।
तो ठीक है, ठीक है, बस हो गया। अच्छा बस ये लास्ट।
ओम शांति। सबसे पहले दादी जी का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद और हमें मौका दिया हम आपस में बात कर सके, ऐसा सौभाग्य कभी कभी जिंदगी में प्राप्त होता है और हम खुश नसीब हैं। धन्यवाद। इतना अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी शायद बोलने को इच्छुक होंगे लेकिन कई लोग अपनी भावनाओं को रोक लेते हैं। डॉक्टर साहब ने बोला था रोकना नहीं है, निकालो तो धमनियां अपने आप खुल जाएंगी। जैसे हमारे दुलिया से आए भाई साहब ने बताया कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक कारण है, शशि बहन ने बताया दूसरा कारण, सरदार जी ने बताया कि दहेज का कारण होता है, और सुधा यादव बहन ने बताया कि जो ईगो क्लैश है वो है। इसके अलावा मेरे ध्यान में एक और कारण आता है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। आज जो माताएं अपने परिवार में आने के बाद यदि उन्हें थोड़ी सी परेशानी रही होती है पहले, जब वो माता अपनी पुत्री को दूसरे घर में भेजती है तो उसके दिमाग में, ध्यान में ये होता है कि जैसे मैंने परेशानियां उठाई हैं मेरी बच्ची आगे ना उठाए, इसलिए उसको पहले से इतना पढ़ाकर भेजती हैं कि वहां पर जाकर तुम ऐसे करना ऐसे करना, इस चीज के ऊपर अपना कब्जा रखना, इतना तुम्हारी सिक्योरिटी होगी तो तुम अपने आप को सिक्योर फील करोगी तो तुम अच्छे से जीवन निर्वाह कर सकोगी। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि तोते को इस तरह से पढ़ाकर भेजा जाता है, वहां अगले घर में जाकर वो खाली वही रट लगाता है, और ये मेन जो कारण है वो इनसिक्योरिटी जो वो फील करती है, उस अपने कवच से बाहर नहीं आना चाहती है और उसे ये लगता है कि मैं नए घर में हूं शायद मैं अपनी रक्षा स्वयं कैसे कर पाऊं, इसीलिए वो जो माँ का पढ़ाया हुआ है अधिकतर उस पर रिएक्ट कार्यवाही करती है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अहम कारण है, यदि वो अपने उस कवच से बाहर आकर नए वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करे, कोई ताकत नहीं है कि उसकी जो नई सास जो नई माँ बनी है वो उसका सहयोग ना करे और उसको अपने पल्लू में ना बिठाए, ऐसा कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो एक माँ भी है, सास का रोल निभा रही है ठीक है लेकिन माँ भी है वो। जैसा बहन रश्मि ने बोला कि अपनी बच्चियों को तो बच्ची समझती हैं, बेटी समझती हैं, और सास बहू को जो है दूसरी नजर से देखती हैं, ऐसा नहीं संभव नहीं हो पाएगा। तो इनसिक्योरिटी की भावना को निकालकर यदि नए माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करें, मुझे पक्का विश्वास है कि सास भी माँ का रोल निभाएगी। धन्यवाद।
ओम शांति। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, वो विचार आपके अनुभव के आधार पर है। चाहे आपके परिवार में किसका भी अनुभव आपके सामने आया हो, आपने देखा हो, आपका अपना निजी न भी हो, परंतु आप गृहस्थी जीवन में होने के कारण इन सब बातों को आसानी से समझ सकते हो। आपके बेटे में हमारे जीवन बिल्कुल अलग है, परंतु अलग होने पर भी शिक्षाएं वही चलती हैं। हम भी एक बहुत बड़े संगठन के बीच में हैं, हमारे से ऊपर वाले भी हैं, बिल्कुल ऊपर वाले, फिर हमारे से साथी भी है बिल्कुल समानता वाले, और हमारे से छोटे भी हैं। अब इतने बड़े संगठन में चलना वो भी कोई सहज बात नहीं है, परंतु समझ चाहिए सबके बीच में चलने की। कोई जैसे ये छोटा बच्चा आके फूल दे के गया, तो हमारे प्रति जरूर हमारे मन में उसके प्रति क्या रहेगा, ये हमारा छोटा बच्चा है, बच्चा बच्चा करके बुलाएंगे, चाहे हमारा हो या न हो, पर उसका वो है तो बच्चा ना, तो बच्चे का भाव पैदा हो जाता है, प्यार करेंगे उस ढंग से। परंतु हमारे से बड़ा होगा, चाहे वो मेरा पिताजी हो या न हो, तो भी मैं कहूंगी पिताजी नहीं, ऐसे नहीं, पिताजी पिताजी करके निकलेगा, क्योंकि हम समझते हैं तो वो हमारे से बड़ा है, बड़े एज में है। और ऐसे जो हमारी समानता वाली सखी होंगी, मेरे समान जो होंगी, उनको हम रिगार्ड देंगे, उनके बात को सत्कार देंगे, उसके बात को हम दुद्गार की नहीं, बड़ों को रिगार्ड देंगे और समान वाले को सत्कार देंगे और छोटों को हम प्यार देंगे। अगर ये बात हमारी बुद्धि में रहेगी सदा सबके प्रति, तो हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हमें तो ये ज्ञान मिला है, ज्ञान से क्या है, पहले समझ हम अपने में धारण करते हैं। हर एक के स्वभाव संस्कार को जानने का हमारे को ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम अपने आप को आत्मा समझते, परमात्मा के बच्चे है वो समझते, पाठ बजाने आए है वो समझते, हर एक का स्वभाव संस्कार पाठ अलग अलग है। मैं किसी से भी किसी की भेंट नहीं कर सकती हूँ, कंट्रास्ट करना ही दुख का कारण है। अभी मैं गुप्ता जी का उसके साथ कनेक्शन जोड़ू, ये तो इतना करता है, वो तो करता ही नहीं है, एकदम उसके लिए नफरत पैदा होती है, बार बार उसको मैं टोकूंगी, भाई गुप्ता जी कितना काम करता, तुम क्या करते हो, तुम क्या, तू तो कुछ नहीं, बेकार हो तुम। तो हमारी भावना बदल जाती है, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है उनमें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे आवाज को सुन करके उसको नफरत आएगी मेरे से, और हमारी अंदर से जुदाई होने लगेंगे, वो हमसे बात नहीं करेगा, रुख ठीक नहीं देखेगा, क्योंकि उसको मेरी बात अच्छी नहीं लगती है, राइट ही नहीं लगती है। अगर मैं समझ जाऊं भाई इसका पार्ट अपना है, उनका पार्ट अपना है, हर एक का पार्ट अलग अलग है, कोई का पार्ट किसी से नहीं मिलता है, भिन्नता सब में है, परंतु अगर मुझे जिस सर्कल में रहना ही है, किसके साथ रहना है, उसका ज्ञान है। पहले मैं माँ के साथ ही, तो माँ का प्यार अलग होता है, माँ के घर में काम करूं न करूं, सोई रहूं गोदी में पड़ी रहूं, उसके तो भी माँ को प्यार रहता है, मेरी बेटी है, थकी हुई आई है, चलो सो जाओ बेटा, परंतु सास तो सास है, उसको समझ करके मुझे चलना है, सास क्या चाहती है वो भी मेरे को समझ होनी चाहिए, उसके अंदर में मेरे लिए क्या इच्छाएं होंगी, उस इच्छाओं का भी ज्ञान हो और उसके पूर्ति का भी लक्ष्य हो, कि जो उसकी इच्छा है वो मैं आई हूं इसके घर में, इतनी आशाएं उसने मेरे लिए रखी है, मैं इनकी सब इच्छाओं को पूरा कर दूं। अगर मैं उस प्रकार से लक्ष्य रखूंगी तो मैं जरूर विजयी होंगी, क्योंकि उसके दिल को मैंने जीत लिया ना, मेरी सास क्या चाहती है मेरे से। तो क्या होता है, कभी नहीं ये समझते, ईगो में आ जाती है, अपने पढ़ाई का नशा होता है, अपने धन का नशा होता है, अपने घराने का नशा होता है, माँ के घर में मैं कैसे चलती थी, यहाँ क्यों मैं ऐसे करूं, यहाँ मैं क्यों ऐसे करूं। तो अगर ऐसा होगा ना, तो अपने घर में जो रियल घर है उसका ये हुआ, माँ का घर तो छोड़ना ही पड़ता है, पर सासू के घर में बसना ही पड़ता है, तो बस नहीं सकेंगी, फिर पति से भी दिल उखड़ जाएगा उसके कारण, और सासू से भी उखड़ा ही रहेगा, हर वक्त ठक 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 होती रहेगी। उससे क्या होता है कि इंसान की जिंदगी, छोटी सी जिंदगी जो सुखमय होनी चाहिए ना, वो दुखी हो जाती, न शादी से पहले सुख पाए, न शादी के बाद सुख पाए, पीछे जब बच्चे पैदा होंगे फिर क्या सुख पाएंगे, आका खुद भी माँ बनेगी, सासू बनेगी, तो उनको भी उनसे ऐसा मिलेगा, तो मेरा एक संस्कार बन गया, तो उसको चलने की कला चाहिए। मेरे पास एक ही छोटा मिसाल, बहुत छोटी सी एज वाली लड़की, जैसे ये अभी आई ना मेरे पास यहाँ, जिसने अनुभव सुनाया, ये तो बड़ी है, वो उनसे भी छोटी आई थी, मानो शादी करके आई थी, अभी उसको बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो हमारे घर में आश्रम में आई ऊपर में, और योग राजयोग शिविर करने, और जब करके पूरा किया तो कहा मुझे 5 मिनट आपसे बात करनी है। तो मैं उसको देखने लगी, मैं कहा तुम मेरे से क्या बात करेंगे ऐसे हंस हंस करके, तो कहा नहीं दादी मेरे को अलग भी टाइम चाहिए अकेला। मैं चलो ठीक है दिया। कहती है बहन जी अभी मेरे शादी की है, थोड़ा ही टाइम बताया था, पर जब से शादी किया की बड़ी रुचि से, और मैंने अखबार में डाला मेरी ये पराई है, मेरा ये है, मैं इस प्रकार का लड़का हूँ तो मैं उनसे मैरिज कर सकती हूँ। तो मेरे पास अखबार का जवाब बहुत आया, उनमें से मैंने एक लड़की को पसंद किया, इंजीनियर था ये था वो था, मैंने पसंद किया, और हमने और कुछ नहीं देखा, माँ को नहीं देखा, बहन है नहीं है, और किसी लड़का अच्छा है समझदार है, मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद जब मैं घर में गई तो मैं अपने पति से तो खुश थी, वो भी नौकरी पर जाता था, मैं भी नौकरी पर चली जाती थी, और हमारी माता कहती हम घर में बैठे बेटा हमको और क्या काम है, तुम जाओ नौकरी करके आओ, फिर मैं घर का थोड़ा बहुत काम करके रखूंगी कुछ, फिर तुम लोग आएंगे तो आके मदद करेंगे। तो कहा जब भी मैं आती थी शाम को तो क्या होता था, वो पति मेरा 5-10 मिनट लेट हो जाता था, पर मैं उससे पहले आ जाती थी, तो मेरी माँ को मेरी सास मेरे को कहती तो रुक जाओ बेटी अभी नहीं चाय बनना, एक ही वक्त चाय बनाना, तुम्हारा पति आ जाए फिर तुम और हम सब कट्ठे पियेंगे। तो इसको चिड़ लगने लगी, यानी मैं दफ्तर से आई हूँ मैं अपनी चाय न पीऊ, मैं पति के लिए रुकूं क्यों, वो भी तो नौकरी करता है मैं भी नौकरी करती हूँ, माँ को उसका ख्याल आता है, वो आवे तो चाय बनाओ। अब वो पुराने जमाने वाले तो कहेंगे ना भाई कट्ठे एक दफ्तर चाय बनाओ पियो मिलकर के पियो खुशी होती है, उसको लगा ये क्या। तो 2-4-8 बार ऐसा करके आकर माँ को कहा मैं नहीं इस घर में रह सकती, हर वक्त एक चाय का प्याला पीते है, थके थके आते हम चाय का प्याला पे तो भी तुम टोक टोक करके अभी न बनाओ, जब वो आवे क्यों भला, वो भी नौकरी करता मैं भी नौकरी करती, ईगो अच्छी है कि अच्छे घर की जो माँ की बहुत लाडली थी गोद से ही निकल कर थी शादी में आई, फिर इस बालके को अपना माँ का घर याद है, मैं तो इसे घर में चली जाऊं घर में। आकर पति को कहा मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ या तो तुम अलग हो जाओ तो रह सकते, तुम्हारे माँ के साथ मैं बिल्कुल एक पल भी नहीं रहना चाहती। उसने कहा क्या बात है, अच्छा तुम नहीं चाय बनाना चाहते तो चाय बना के पी लो, मैं आऊंगा मैं खुद आके बनाऊंगा, पर इससे लाइफ को अलग क्यों करती हूँ। कहती है नहीं मैं क्योंकि ये टोकेंगी जरूर, ये बड़ी है पुरानी है ये रुकेंगी नहीं, ये तो टोकेंगी तो मैं इनकी बार बार टोक नहीं सहन कर सकती हूँ, तो इसलिए ये डिसाइड किया कि यहाँ से माउंट आबू से होके जाने के बाद मैं फाइनल उसको जवाब दे दूंगी, तलाक दे दूंगी पति को, इसी एक चाय के प्याले के कारण पति को तलाक देती है। और वो मेरे से बात करती है, कहती दादी आप बता मैं क्या करूं। मैं कहा मैं तुम्हारे को पूछती हूँ तू अपने दिल से पूछो, तुम्हारी दिल क्या समझती है कि एक चाय के प्याले के पीछे सारा घर बर्बाद हो जाए, पीछे क्या करेंगी, चलो एक को छोरा क्या फिर दूसरा अच्छा मिलेगा, दूसरी सास अच्छी होंगी इनसे ये पता है। कहते नहीं। तो मैं कहा फिर किस आधार से तुम इनको छोड़ते हो, या तो तुम्हारे पास ऐसा हो आधार भाई वो बहुत अच्छी है वो ऐसे मेरे को चलाएंगी, हाँ मैं ऐसे चलूंगी उनके साथ, तुमको पीछे का भी पता नहीं और इस घर को भी तुम छोड़ देती हो, भला सारी उम्र माँ के बीच में रहेंगी, तुम्हारा भाई है कहाँ। मैं कहा शादी करके आएंगा तो भाभी के साथ रहेंगी, चुप रही। मैं कहा फिर तुम किसी के साथ भी नहीं रह सकते, मेरी राय है तुम सदा के लिए घर में माँ के पास रहो, माँ मर जाए पीछे तुमको जो चाहिए सो करो, पर तुम किसी के साथ रह नहीं सकती हो, तुम्हारे में एडजस्ट पावर नहीं है, समझ भी नहीं है, आखिर सास को सास है ना, अगर कहा तो क्या हुआ, एक चाय का प्याला इतने भी तुम्हारे में ताकत नहीं, चलो तुम बना के पियो मम्मी जब बाप पिताजी पति आएगा ना मैं बना के दे दूंगी, आपको भी बना के दूंगी उसको भी दूंगी, वो पिए तो बहुत अच्छी बात अपने साथ, अगर न पिए तो तुम थकी भी हो, उसका मम्मी मैं तो थक जाती हूँ बहुत, मैं एक प्याला पी लेती हूँ फिर पति आएगा मैं आपको भी बना के दूंगी उनको। मैं कहा वो अच्छा कितनी सुख में तुम्हारे जीवन हो जाए, तो एक चाय के प्याले के पीछे पति को छोड़ देती हो। मैं कहा ये तो मिसाल अखबारों में आना चाहिए कि आजकल के बहुओं को क्या चाहिए, बहुआ कैसे चल सकती हैं। मैं कहा वंडरफुल, तुम्हारे जैसी औरत मैंने नहीं देखी। मैंने कहा मैं तो कुमारी हूँ, मैंने कोई ये लाइफ व्यतीत नहीं किया, पर समझ काम करते हैं ना। सास सास होती है, सास के मन में आश होती है, तुम्हारा काम है उसकी आश पूरी करना, उसकी दिल ऐसी लो वो खुश हो जाए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी सारी थकावट दूर कर देती है। वो खाना बना के मम्मी तुम क्यों बनाती हूँ, हम चाय पानी पी के हंस के बैल के फिर बना लेंगे। यानी तुम दिल लो तो उसको लगो मेरे घर में मेरी बहू आई, मेरी सेवा की। उनके अंदर आश होती है कि सेवा करे। तू सेवा तो न करो पर एक चाय का प्याला भी न बना के दो, और तुम बिगड़ जाओ तो वो बेचारी डर जाएंगी, भाई मैं तो उसको कुछ नहीं कह सकती हूँ। फिर तुम्हारे बेटे और इनके बीच में फर्क पड़ेगा, वो मम्मी कहेंगी भाई मैं तो तुम्हारी औरत को कुछ नहीं कह सकती, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो ये ऐसे मुंह फुला के बैठ जाती है, मैं कैसे इनके साथ रहूं। तो माँ बेटे का विचार फिर भी मिल जाएगा, पर तुम नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो आकर क्या होगा, तुम अलग हो जाएंगे, फिर तुमको कौन रखेगा। तो मैंने रियलाइज करा, दो चार बातें रियलाइज कराए। तो अपने माँ से भी पूछो, सारी उम्र रखेंगी, तुम्हारे भाभियों को छोड़ देंगे, तुमको रखेंगे। अगर वो भी न रख सके तो फिर तुम्हारी भाभियां शादी करके बना ये घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा भी घर बर्बाद होगा। तुमने इस घर को नहीं बसाया तो तुम्हारा अपना घर जो लौकिक है वो कैसे बसेगा। तुम्हारे भाभियों को भी पता लगेगा कि इसके कारण इसने ये छोड़ा। मैं कहा कितना उल्टा काम हो जाता है, आज से लेकर के ये दिमाग से निकाल दो मुझे इसको तलाक देना। ईगो है ना, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों झुकू, मैं क्यों चाय का प्याला पीऊ। मैं कहा जीवन में सुखी नहीं रहना चाहती हूँ, सुखी रहो तो तू सब सेवा करो, सेवा से तुमको मेवा मिलेगा, वरों की आशीर्वाद मिलेगी और सारा परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा। तुम अभी यहाँ से जाकर कैसा कर सकती हो। तो मैंने ऐसे शांति से धीरे धीरे समझाती रही, तो वो ऐसे से कर ले। मैं कहा अब इसके बाद जाकर के जो तुम करो अपने विवेक से करना, अगर मेरी बात जचे तो करना, न जचे तो न करना, फिर जचे और करो तो मुझे लिख करके भेजना दादी। ऐसे मैंने किया, फिर मैं तुमको खुशी का प्रसाद भी भेजूंगी और मैं पत्र भी भेजूंगी। ऐसे करके मैंने रवाना किया, दिल्ली का मिसाल था। सचमुच वो लड़की वहां गई, माइंड चेंज हो गया। पहले वाला जो माइंड था ना, चिड़चिड़ा और सासू ऐसे क्यों कहती है, क्यों मैं रुकू, क्या कारण है, वो ईगो खत्म हो गया। फिर निर्मांचित होकर के सास को भी फीलिंग आई, जब से ये माउंट आबू से आई है तब से मेरी बहू सुधर गई है, पता नहीं क्या भगवान ने उनको, कैसे भगवान ने क्या मत दी, उसको लगा कि भगवान ने उसको कोई मत दी है। आगे चलते चलते हमारे ब्रह्मा कुमारियों के साथ उनके सास का भी संबंध जुट गया। आते जाते फिर ये सासू ने बताया, कहा मुझे जब से वो माउंट आबू से आई है तब से मेरी बहू में चेंज, उसका वातावरण चेंज है, मेरे साथ बोलचाल चेंज है, घर में जो चिड़चिड़ापन था वो खत्म है। मैंने सिर्फ कहा तुमको एक वक्त सत्संग में जाना है, या तो तुम्हारी शादी बर्बादी हो जाएंगी जैसा तुम तुल करके आई हो, मैं ऐसे ही करूंगी, और या तो तुम्हारी शादी आबादी हो जाएगी, पर तुम सेंटर में एक वक्त जरूर जाओ। एक वक्त जाने से उसको सद्बुद्धि मिलती गई, सद्बुद्धि मिलते 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 उनकी इतनी वृत्ति चेंज हो गई कि सचमुच सास को सास नहीं समझा पर माँ समझा, मेरी माँ। एक घर छोड़ा पति की माँ तो मेरी माँ हो गई ना, वो सेवा कर तुम सेवा करो ना, फर्ज किसका लगता है। तो जो पहले के जमानों का था ना भाव, बड़ों के प्रति रिगार रखवाना, वो माँ बाप रखते थे, आज के जमाने में नहीं। लड़कियों के माँ बाप देखेंगे कि लड़का अच्छा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, संपत्ति वाला, बस शादी हो गई। लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, फैशनेबल है, ये है वो है, वो शादी हो गई। पर ये नहीं देखते लक्षण क्या है। पुराने जमाने की माताएं गुणों को देखती थी, लक्षण देखती थी, व्यवहार देखती थी, दो चार बारी आते जाते बच्चे का व्यवहार देखते थे और करेक्शन करते थे, भाई ये तो हमारे परिवार में चल नहीं सकेंगे। हम कुमारियों को आजकल लेते हैं ना, तो आजकल की कुमारियां हमारे पास तो जैसे बहुओं के समान हो गई। पहले की कुमारियां और थी, धारणा योग और कुछ लगन से आती थी। आजकल हम लोगों को भी आवश्यकता है, सेंटर खुलते जाते हैं खुलते जाते हैं, हम लोग कर नहीं सकते, तो हम कहते हैं भाई तुम्हारे पास कोई कुमारी हो मेरे पास भेज देना। मानो एक एक कैसे हुई जैसे सर्वेंट, तेरे पास कुमारियों ने एक मेरे को दे दे, मेरे से तो रोज मांगते है बहने, तो मेरे पास कोई हाथ में आ जाती है तो मैं दे देती हूँ। अब मैंने उनको आजमाया तो नहीं होता है, मैं रख करके 6 मास 12 मास तो मुझे पता लगे इस बात की मैं ये बात है इसमें ये, मैं उनको समझा दूं तो न मैं समझा पाती हूँ, पर उनकी आवश्यकता अनुसार दे देती हूँ। फिर मैं ये कहती हूँ कि 12 मास ये बालकी तेरे पास रहेंगी, कोई भी बात हो इनकी मेरे को देना, मैं आप ही समझा देखूंगी इसमें क्या कमी है, क्यों ऐसा हुआ, तब उसको हम छोड़ेंगे किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। तो हमने देखा जब बालकी के हाथ में मैं अपने हाथ लेती ना उनका हाथ अपने हाथ में, तो समझो उस बालकी को दिल में ये तसल्ली होती है मेरी दादी, मैं अगर तुम किसी चीज की परवाह नहीं करना, तुमको कोई चीज मिले कोई न मिले मैं बैठी हूँ, बस मैं दिल ले लेती हूँ, मैं तुम्हारी बैठी हूँ, तुमको कोई चीज चाहिए कभी भी तुम मधुबन में आओ तो मेरे से बात करना, वो तो है तेरी पर कोई भी बात हो तो मैं बैठी हूँ। तो देखो संबंध सुधर जाते हैं, छोटी छोटी बात समझाओ पर प्यार से समझाओ, वो बात गुस्से से समझाते समझ में नहीं आता, विवेक खत्म हो जाता है, ईगो आ जाता है किसने ऐसा क्यों कहा इसने ऐसा क्यों कहा, तो क्यों क्योंकि उसको जो अंदर लग जाते हैं ना फिर किसी के पास समझ भी नहीं आती। तो हम कहते हैं समझाओ ऐसा जो उसके बुद्धि में बैठे, एक बच्ची है बुद्धि छोटी है, काम की अच्छी है स्वभाव की अच्छी है पर बुद्धि छोटी है, अब दूसरी बहन बुद्धि को समझती नहीं है, उसको हर वक्त ऐसे कहेंगे ऐसा क्यों किया, अरे तुमको ये समझाइए क्यों किया, अरे भाई तुम इसके बुद्धि को तुम समझो, अभी तेरे पास आई तुम इसके बुद्धि को समझो, इसकी बुद्धि क्या है, बुद्धि छोटी है तो छोटी अनुसार उसको इतनी बात समझा जो उसके समझ में आ जाए, ऐसे ढंग से समझा जो समझ में आ जाए उसको। तो भावना है बदलने की, हम कुमारियों को बदलने चाहते हैं, कुमारियों की कैसी भी माइंड हो पर इतना प्यार दें जो वो मेरे प्यार में सब बातें मान जाए और चल जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए वो बालकी, उनको विश्वास हो जाए कि ये दादी हमको सदा के लिए सुखी रखेंगी। ऐसे माँ को जब सासू माँ को होता है ना तो घर बस जाता है। एक सासू थी जो उसने शादी करके आई ना तो बहू को बिल्कुल बहू कहा ही नहीं, जैसे कहते बेटी तुम एक बेटी ये एक बेटी तुम कभी न समझना मैं बहू हूँ, इस घर में तेरा भी अधिकार है मेरा भी अधिकार है। तो बड़े प्यार से उसको चला, तो मेरे को कहती दादी मैं तो बहू को कभी भी बहू नहीं समझती, मैं बेटी बेटी करके बात करती हूँ लेन देन करती हूँ, और उनकी जो कुछ है ना बातें उनमें अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं रखती, मेरे को कुछ नहीं चाहिए पर बहू जिसमें खुश रहे उसको खुश रखना चाहिए, रंग करे तो मैं कुछ समझाऊ ना, रंग न करे तो बस उसको भी अधिकार है चलने में जीवन में। तो ये सासों में भी चलने की कला चाहिए और बहुओं को भी चलने में कला चाहिए, बहुओं को ये 3 बातें जो होती है ना पढ़ाई का नशा धन का नशा बुद्धि का अपमान ये मारता है, अगर इनको ये ट्रेनिंग मिलती जाए तो कुमारियां भी सब बदल जाती, सासों में भी बदल जाती है बहुआ भी बदल जाती है, फिर संबंध में मधुरता रहती है कटु नहीं रहता है। हमारे बाबा ने नस नस में ज्ञान भर दिया है, हम कभी किसी से ऐसे नहीं करते हैं जैसे दुनिया में करते, हम कहते हम तो जैसे सचमुच यहाँ स्वर्ग में बैठे हुए, आई गई बात 2 मिनट में कह करके ओम शांति, जास्ती किसी के स्वभाव संस्कार के पीछे नहीं पड़ जाते, भाई जितनी ताकत होंगी उतना काम करेंगे ना, नहीं कर सकते तो मैं ताकत आएंगी कहां से, अब मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो कहां से बेचारे में ताकत आएंगी, वो समझ करके हम बड़े आराम से चलते। इसलिए हमारा जीवन हमारी सखियां साथियां सब हम एक दूसरे संतुष्ट रहते हैं, और मेरे को ये विषय मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं खुद कहती हूँ जो गृहस्थी लोग आते हैं जिनके घर में बिगाड़ बिगाड़ हो जाता है उनको मैं बैठ करके ट्रेनिंग दूँ, सचमुच मुझे आता है, मैं इनको इसने अभी भी मेरे विषय को चेंज करना चाहा, मैं कहा नहीं आज तो मैं यही विषय अच्छा लगता है अगर घर घर ऐसे स्वर्ग हो जाए तो बाकी चाहिए क्या। मैं कहती हूँ स्वर्ग हम किसको कहते हैं जिसमें तन का भी सुख हो मन का भी सुख हो धन का भी सुख हो संबंध में भी प्यार हो पड़ोस में राज में भी राज से भी हमको नफरत नहीं। यहाँ तो राज के ऊपर भी क्रिटिसाइज करते रहेंगे ये तो ऐसा है ये मिनिस्टर ऐसा है पर तो सबको करेक्शन देते रहेंगे, करेंगे हम कुछ नहीं पर करेक्शन हम सबको दे देंगे राज में भाग में सब में, पर अगर राज भाग सब हमारी किस्मत हमारे साथ है कुछ हमको मिलता है कुछ नहीं मिलता है तो भी किस्मत तो हमारे साथ है ना। तो किस्मत के ऊपर भी नाज को अगर किस्मत हमारी हमारे साथ होंगी तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता और कोई इच्छा की आवश्यकता भी नहीं रहती। हमारा भगवान के बच्चे हैं, हमारी तकदीर हमारे साथ, हम अपने साथ लेके आए हैं। हमारी तकदीर को ये छीनना चाहे ना नहीं छीन सकता है, क्योंकि वो हमारी खुद के कर्मों के हिसाब से है। तो हमारी तकदीर का भी अपने को नाश होना चाहिए। चलो तकदीर में नहीं होगा तो हम समझ जाते भाई पुरुषार्थ तो किया फिर भी नहीं हुआ, चलो मेरे तकदीर में नहीं था, खत्म, उसको फिर फुलस्टॉप लगा देते। तो मन सदा शांत सरल रहता है और सदा हर्षित रहता है। नहीं तो मन में तो आपको पता है छोटी छोटी बातें परिवार में होती है, क्यों क्या में ही सारा दिन बीत जाता है। तो हम तो अभी इससे छूट रहे हैं ना। ओम शांति।
ओम शांति। दादी जी ने हमें बड़ी अच्छी सीख दी कि अपने मैपन को मार लो और सासों को भी कि वो बहुओं को बेटी समझे और बेटियों को भी कि वे अपनी सास को माँ समझे, तभी संबंधों में मधुरता आएगी। और दो शब्द मैं दादी जी के लिए बोलती हूँ।
एक अच्छा मिसाल है, दृष्टांत है जो मैं सुनाने चाहती हूँ, टाइम तो मेरा भी हो गया है। एक किस्सा है, कहानी जैसे आती है। तो एक गांव था, उस गांव में एक पुराने जमाने की बड़े घर की सासू थी, समझो बड़ी थी बुढ़ी। तो उसको उसका स्वभाव थोड़ा तेज था, इसलिए सब घर वाले नफरत करते थे। जब वो खाना मांगती थी तो कुछ न कुछ दो शब्द बोल करके फिर खाना भी देते थे। न देवे वो भी नहीं कर सके, नहीं मैं सास है बड़ी है कुछ करेंगी कुछ ये करेंगी, तो डर के मारे भी करते रहते थे। तो आखिर घर वालों ने फैसला किया इसका तो कल कलेश मिटेगा ही नहीं, तो हम गांव वाले मिल करके इसका टर्न बाय टर्न भोजन रखते अलग अलग घर में। तो चलो एक दिन में एक बार गुस्सा करेंगी, इधर न करेंगे उधर करेंगे, हम तो दो चार दिन शांत रहेंगे ना। इसी ख्याल से उन्होंने प्लान बना, आज इसके घर में आज इसके घर में आज इसके घर में। तो सभी भोजन जिस दिन जिसके घर में जाती थी तो पहले ही वो इम्प्रेशन में रहते थे, भाई आज टर्न है हमको इसके गाली खाने का। आज वो माता हमारे पास आती है, कले कले सारी वहां से छोड़ के हमारे पास आएंगे, हमारे मुनि का पहले ही इम्प्रेशन में। तो कुछ न कुछ वो लोग भी चुंगा लगा देते थे, सेवा में कमी कर देते थे, पानी टाइम पर चाहिए नहीं देंगे, कुछ और सेवा करनी चाहिए नहीं करते। आखिर एक दूसरे गांव से एक लड़की आई, उसके मन में आया कि इस माता के प्रति इतनी नफरत क्यों, क्या बात है, ऐसा क्या उसके अंदर है, कोई बिच्छू है कोई सांप है या क्या है, इतने लोग डरते हैं जो बात मत पूछो। तो उसने कहा कि ठीक है इस सासु माँ को मैं अपने घर में बुलाऊंगी। उसने रिहर्सल की, तो जिस समय वो आई है ना तो उनको क्या अंदर चाहता है बुढ़ी माताओं को, एक मान चाहिए, एक प्यार चाहिए और सेवा चाहिए, तीन बातें तो जरूर चाहिए उनको। तो उसने किया आते सार उसका सत्कार किया, बहुत अम्मा अम्मा करके बात की, गले लगी, ये किया, फिर बिठाया खटिया पर विधि पूर्वक बता के बोला मम्मी जब तक भोजन बने तब तक जलपान करो, पापड़ पानी दे के खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद कहा अभी थकी हुई आप लेट जाओ थोड़ा मैं पाँव दबाऊं, वो भी सेवा की। फिर खाना बढ़िया गरम गरम करके उनको खा के खिलाया। तो सास एक एक कदम में खुश होती जाए और हर वक्त उसको आशीर्वाद दे, बेटी तुम बसी रहना, बेटी तुम ऐसी ऐसी। इसने कहा मेरे साथ तो ये बहुत अच्छा व्यवहार करते है, लोग क्यों ऐसे कहते हैं। फिर खाना खिलाया, फिर चाय पिलाई शाम को, फिर आराम कराया, सब कुछ किया। तो उसने कहा बेटी मैं ये चाहती हूँ मैं तुम्हारे पास ही रहूं, तुम मेरा रोज सेवा कर सकती हो, मैं अपने बेटे को कह के आऊंगी तो मैं आज से लेकर उसके घर में रहूंगी। कहा अम्मी ये तो घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहू हूँ, सेवा मैं सारी उम्र तुम्हारी करूँ। उसको खातरी हो गई, अपने बच्चों को कहा आज से लेके मैं उसके पास ही रहूंगी। सही तो एक दिन दूसरा दिन कितने दिन तक उनका व्यवहार वही, बड़े प्यार से और दिल से, वरों का रिगार्ड पुरानी माता है, इनकी मैं आशीर्वाद की पात्र बन। तो आखिर उसने कहा सारी मिलकत का मैं तुमको अधिकार देके जाती। फिर सभी ने उनसे पूछा तुमने ऐसा क्या किया, कहा मैंने इनकी तीन बातों को दिल में धारण किया कि माताओं को बड़ी बड़ी माताओं को मान चाहिए, अगर हम मान नहीं देते हैं तिरस्कार करते हैं ऐसे शब्द बोलते हैं जो बड़ों को नहीं बोलना चाहिए तो उसको चुप जाते फिर वो बहुत दुखी होती है। दूसरा कोई उनको प्यार नहीं देता है तो वो दुखी हो जाती है, प्यार से खिलाओ पानी पिलाओ तो भी प्यार से दो ऐसे करके दो। थाली ऐसे रखो, है ना, गुस्से में आएंगे थाली ऐसे रख के चले, भाई ये क्या, कौन खाएगा ऐसे, पता तो लगता नहीं ये गुस्से से खिला रही है। और दूसरी तीसरी सेवा, ये तीन बातें उसने नोट की। बस उसके बाद उसने सारी मिल्कियत, बहुत मिल्कियत थी, पुराने जमाने की बातें होती ना, जमीन मकान बकान सब उसके नाम पर लिखा कि यही बहू है जो सबसे अच्छी है और मधुर है और ये मेरे को संभाल सकती है, इसलिए मैं इसके नाम पर ये सब करके जा रही हूँ। मैं एक मिसाल बताती हूँ, अगर हमारे मन में ये आ जाए, जैसे हमारी दादी है, हम प्यार रिगार्ड और सेवा तीनों हमारे अंदर में है, इतनी पुण्य आत्मा हमको ज्ञान है, इस पुण्य आत्मा की क्या सेवा हमको करनी चाहिए, हम सब तैयार रहते हैं कि दादी की एक भी सेवा हमको मिले, हमारे समान है, जास्ती फर्क नहीं है, उम्र में भी जास्ती नहीं, 2 साल का फर्क होगा, परंतु उसकी जो स्टेज है उस स्टेज को हम जानते हैं, उस अनुसार हमारे दिल में रिगार्ड है, रिगार्ड होने के कारण जब भी हम दादी के कमरे में जाएंगे, दरवाजे के पास खड़े होंगे, बड़े प्यार की निगाह से हमको देखेंगे, आओ आओ मनोहर तुम बैठना, मैं आई आई मैं अभी आती हूँ, चेक कराता ये ब्लड प्रेशर वगैरह, मनोहर तुम यहाँ बैठना मैं आती हूँ, प्यार से बोलना, रिगार्ड से बोलना, तो हमारे दिल में हमको प्यार है तो उसको भी प्यार है, हम रिगार्ड देते हैं तो वो हमको रिगार्ड देती है, हम उनको दादी कहते हैं वो हमको दादी कहती है, हम समझते हैं दादी नहीं, दादी हमारी दादी है, पर वो कहती है नहीं समान है ना, टाइम तो वही है ना, क्यों मैं दादी हूँ, ये सब दादियां हैं, तो दादी समझ कर के हम लोगों से चलती है, और प्यार रिगार्ड, और जो बात हम कहेंगे ना हमारे बात ध्यान में रखेंगे, कोई चीज की आवश्यकता हो हम कहें तो वो फौरन ध्यान में रखेंगे, तो इससे क्या होता है, हम दिलों के नस्तिक है, हम उसको बाबा की दृष्टि से देखते हैं, बाबा ने इसको हाथ में ला करके निमित्त बनाया, तो दादी को बाबा ने निमित्त बनाया इस सीट के लिए, इसलिए हम बाबा को बाबा उसमें देखते हैं, बाबा की तरह उससे व्यवहार करते हैं, तभी देखती हो ये सारा कारोबार कैसे चल रहा है, नहीं तो यहाँ तो ठक 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 इतनी हो जो बात मत पूछो, हम जितनी दादी हम कहेंगे हमारे इतने जिज्ञासु है, सारा पंजाब मेरा है, मैं समझूंगी मेरी तो पावर बहुत बड़ी है, वो कहेंगे मेरी पावर बड़ी है, मैं महाराष्ट्र की एड हूँ, वो कहेंगे मैं पढ़ा, अरे भाई ये तो त्याग करके तो यहाँ आए, इसके लिए थोड़ी आई कि मैं महाराष्ट्र की एड बनू, मैं पंजाब की एड बनू, मैं फलानी एड, हम आए सेवा के लिए, सब बाबा के बच्चे हैं, हद भी नहीं रख सकते कि ये पंजाब का है, ये गुजरात का है, ये फलाना है, बाबा के सब बच्चे हैं, उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख है, तो भगवान के बच्चे ना, हमारा काम है ऊंची दृष्टि से देखना और ऊंचाई से व्यवहार करना, फिर सुख शांति है, झगड़ा होता ही नहीं है, और दूसरा स्वार्थ नहीं है, बहु सासों के बीच में स्वार्थ जाऊंगा ना, सास को स्वार्थ दूंगा, फलाना त्योहार है गई है कुछ लेके आवे, नहीं लेके आई तो क्या लाया, बहु इधर तो आओ क्या लाया, अरे भाई वो बेचारे पहले डर जाएंगे, अब मेरे माँ ने तो कुछ दिया नहीं, ये तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी, पहले ही तो सासू के मन में स्वार्थ, भला हम लोग है कहाँ जाते है आते जो मिलता है जैसा भी मिलता है शिव बाबा के ये गमी डाल देते हैं, स्वार्थ का सवाल ही नहीं है, हमको नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो कुछ भी नहीं चाहिए तो स्वार्थ नहीं तो झगड़ा भी नहीं, अगर थोड़ा भी हमारे जैसी सरेंडर बहन में थोड़ा भी स्वार्थ आ जाए तो दूसरे में भी स्वार्थ आ जाएगा, तीसरे में भी स्वार्थ, और स्वार्थ की लाइन लग जाएंगे, इसलिए यहाँ स्वार्थ का त्याग है, जहाँ स्वार्थ होगा वहां जरूर थोड़ी ठक ठक होंगी, नहीं होगा तो नहीं होंगी। ओम शांति। किसी भी बहाने भगवान के घर में आप आके शफा पा रहे हो, ये सबसे बड़ी किस्मत की अच्छी बात है, ये किस्मत आपको साथ में लेके यहाँ पर पहुंची, सब खुश है, सब खुश है, मैं देख रही हूँ, मुझे गुप्ता जी अभी पूछने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि मैंने देखा ना पहले दिन का चेहरा और दूसरे दिन का और तीसरे, तब मैंने पूछा कितना दिन हुआ है। अच्छा ओम शांति।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार,
सब में